તારીખ 6-10-1994 શ્રી સમયસર કલષ્ટિકા શ્લોક નંબર 181 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 73.
આગે કે પદો કરતા જોડના પિતા
સૌ વિકાસ મેળવેલા માને છે
कर्म परमाणु स्थिति का अनुभव हुआ था, उसकी स्थिति पूरी होती है और पूरी मुक्ति को देवान के अनुभव में आ जाते हैं और उनका हस्त लेकर के फिर जाते हैं। तो ऐसा सभी को हर समय चालू है, उनको स्वच्छता की नजर आते हैं, तो विकास में आए हुए तत्व की नजर आते हैं उनको और जीव के संयत प्रसाद के कारण विकास में नहीं आए हो ऐसे परमाणु की स्थिति अपकर्षण होकर के अपकर्षण स्थिति छुट्टी हो जाने से तो उदय में आ जाते हैं और फिर जाते हैं। उसको पौधिपात निर्मिरा रूप कहते हैं, उसको सकाम निर्मिरा रूप कहते हैं। सकाम में जब काम न माने पुस्ता या काम माने पुस्ता सब के कारण उसको गुरु के मिला वो ज्ञानी को कहते हैं, उसको रूप में ज्ञानी को नहीं देते हैं। निर्मला का अर्थ है स्थिर जाना, निर्मला का अर्थ क्या है स्थिर जाना, सामान्य अर्थ हो जाए। निर्मला का चार प्रकार है, पहले विपाक, पहले विपाक, पहले विपाक मैंने विपाक होना की स्थिति पूरी होने के पहले से जाए अन्य प्रसाद के कारण होते हैं, उसको पहले विपाक कहते हैं। और जो स्थिति जिसकी पूरी होने जा रही है वो उन्हें जहाँ पर दिख सकते हैं उसको पहले विपाक कहते हैं। और सकाम निर्मला और अकाम निर्मला, जो प्रसाद के कारण से निर्मला होती है वो सकाम निर्मला है और वैसे ही उदयगत कर्म की निर्मला होती है जिसमें कोई बुद्धि स्थल चलाने नहीं है वो अकाम निर्मला है, तो प्रसाद करना भी वो अकाम निर्मला है। तो निर्मला के चार इस प्रकार से जिसको अनादि कर्मबंध कहा लेकिन अनादि होता वो कर्मबंध नहीं है, पुराने कर्म उससे जाते हैं नए नए कर्म बनते हैं और उसी प्रकार से कर्म की बंधावस्था अबंधावस्था जिसको हमने कहा अनादि काल से चालू नहीं है। जीव उसमें नहीं है वो का वो, जैसे हम हमारे दिल का विचार करें तो अनादि से हमारे जीव को कर्म संबंध रहा है, लेकिन जिस कर्म का संबंध रहा है वो कुछ काल पहले का संबंध हुआ है, इसके पहले दूसरे कर्म का संबंध था, इसके पहले दूसरे कर्म का था, इसके पहले दूसरे कर्म का था, वैसे कोई पदार्थ है या तो हमारे आत्मा या उदय दो में से एक जगह तो परिणाम लगेगा लगेगा और लगेगा तीसरा तो कुछ स्थान नहीं, या तो उदय में लगता है परिणाम या तो आत्मा में लगता है। जिसने आत्मा को पहचाना और आत्मा के गुणों के प्रति आत्मा के सुख के प्रति जो आसक्त हुआ उसके परिणाम आत्मा में लगेंगे। जिसने आत्मा को नहीं पहचाना इस उज्जवल पर्याय में सुख है ऐसा भ्रम से उज्जवल के प्रति आसक्त हुआ है उसको परिणाम उदय में लगे। दो प्रकार की आसक्ति होती है, जहां सुख है वहां आसक्ति होती है, सुख नहीं है और सुख की कल्पना है तो भी आसक्ति चालू रहेगी और सही सुख को पहचान नहीं तो इससे कुछ परिणाम लगे बिना नहीं रहेगा, होते ही लगेगा। बस पहचान पहचान जैसे आएंगे पता आएंगे, हाँ पहचान के लिए परिचित करना पड़ेगा, परिचित के लिए अनुमोदन करना पड़ेगा, परिवर्तन के लिए भावना चाहिए, भावना के लिए पूर्णता का लक्ष्य होना चाहिए, परिचित के लिए सुधारण होना चाहिए। ये सब आगे की बात प्रकार से नहीं होगा तो ये बात तो लागू करने वाले नहीं है। क्या हम संस्कार करते हैं तो निर्ज्ञान का विषय चल रहा है, तो क्या निर्ज्ञान का हमारा स्टेज है या नहीं है? इसके सब आगे के क्रम वाले किसी में से हम पसार होकर के निर्ज्ञान तक आ पहुंचे हैं या नहीं आ पहुंचे हैं, ये हमको विचार करना है। अगर हम नहीं आ पहुंचे हैं तो हम किसने से हमारा निर्ज्ञान में कोई कार्य तो नहीं कर पाएंगे, हो सकेगा नहीं, करना चाहे तो भी हो सकेगा नहीं। इसलिए कभी कभी पूछते हैं अपने लोग उसको समय साल तो बहुत साल से पढ़ते हैं, उसमें निर्ज्ञान का प्रकरण हर हर अधिकार में चले हैं, प्रत्येक अधिकार में चला है। तो समय साल तो आपने बहुत सालों तक पढ़ा, निर्ज्ञान कितने घंटे का कितने महीने किया क्या उसका साल नहीं पूछते? इतने जीवन में अनेक बार समय साल पढ़ा, बहुत सालों तक पढ़ा, उसने कहा हुआ निर्ज्ञान हमने कितनी मिनट और कितने घंटे किए तो इसका जवाब निकलना बहुत मतलब यह है कि हमारा प्रयोजन सब रहा नहीं है, हम जो के जो वहां के वहां ऐसे बने जाते हैं। यही कारण है कि छात्रता अध्ययन बहुत लंबे काल तक लंबे साल पर्यंत करने पर भी हमको हासिलान नहीं होने का यही कारण है कि वर्तमान में हमको किस बात का प्रेम रहे इस पर हमारा ध्यान नहीं गया है, यही कारण से वो बात रह गई है। तो ये बात सोच समझ कर हमें जो भी स्वाध्याय करना है वो करना है या नहीं करना है तो नहीं करना है। हमारा प्रयोजन सके इसलिए हमारी भूमिका को बराबर हमें हमको मालूम कर लेना चाहिए हम कहाँ खड़े हैं और जहाँ खड़े हैं वहाँ से किस कदम हम कैसे आगे बढ़े, इतना तीक्ष्ण सूक्ष्म प्रयोजन हमको भाषित नहीं होगा तो हम हमारे प्रयोजन की बात हमारे सामने आने पर भी हम उसको समझ सकेंगे बात हो जाएगी। हमारे तरफ किताब लोकन करें, हमारे समझे अगर हम खुद नहीं समझ सके अपने आप से तो सत्संग में समझने का कोशिश करें, और साधन भी उपलब्ध है। कभी देखिए आपस में विचार करें हमारी कौन सी भूमिका है बताइए, वास्तव में इतनी बात है भूमिका की भूमिका में हम कहाँ खड़े हैं, तो बाकी हमें जांच तलाश अच्छी तरह कर लेनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी प्रकार की बात है। सत्संग में सत्संग समझने के कारण से किया जाता है, समझाने के कारण से मनुष्यों को करना नहीं चाहिए। मनुष्यों को कभी दूसरे मनुष्यों को समझाने के अभिप्राय से सत्संग नहीं करना चाहिए, लेकिन हम समझने को आए हैं तो हमको समझने के लिए हमें सत्संग करना ये अभिप्राय लेके बैठना चाहिए, वरना तो एक नुकसान का और नुकसान का प्रसंग हो जाएगा। अपनी क्षति बताओ तो क्षति परिस्थिति वो है कि खाने को खाना नहीं कहा जा सकता, तो कहेंगे तो बर्दाश्त भी करेगा नहीं, बहुत डेलिकेट है। इसलिए कहने सुनने में भी योग्यता चाहिए, वो तो नहीं कहा जा सकता, और जो सुनने योग्य है उसको कहा भी जाता है तो उसकी क्षति निकल जाती है, कहना नहीं निकलता। इसलिए जो सच्चे आत्मार्थी है, सच्चे मुमुक्ष है, उनको अपनी ओर से प्रार्थना करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए कि हमारी अयोग्यता हो, हमारी भूल हो, हमारी क्षति हो, कृपया हमें बता दीजिए। हमको हमारे गलती भूल बताने वाले का उपकार मानेंगे, इससे बड़ा उपकार कोई हमारा नहीं है। इस भूमिका में अगर कोई खड़ा है तो उसको बताने में कोई आपत्ति, वरना परिस्थिति हो जाती है, जो सत्संग के लिए आया है वो बन जाएगा, चला जाएगा, सत्संग का योग उसको सुन जाएगा। करने की योग्यता वाला भी कर सकता है, उसमें नदी बांधा वो भी कर सकता है, इसके सिवा तो अनुसार ज्ञानी हुई है लेकिन पहचान पाए ऐसे बात है। जब तक पूजेंगे उसका पहचान होगा, नहीं पूजेंगे उसको तो खुली रूप से योग मिल जाएगा पहचान। ज्ञानी को ज्ञानी मानकर भी चलते हैं और भक्ति भी करते हैं, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में तो भक्ति कर पाएंगे तो वो संज्ञानी लोग आएंगे, उनको आने चाहिए, वो आएंगे तो अभी तो दर्शन में थोड़ा मंद होगा, लेकिन ये कोई स्थिति लंबे का सत्कार हो जाने में दर्शन में स्थिति आएगा। होता क्या होता है इसका ख्याल नहीं हो तो भूल जाएगा। सर्वज्ञता विषय दे रहे हैं संजय, अनादि से जीव के साथ कर्म का संबंध आया, चला आया है, नहीं कर्म का तो ऐसा संबंध जब टूट जाए, नया बंध नहीं हो रहे और ऐसा पुराना संबंध उठ जाए, जीव ग्रह अपने शुद्ध स्वरूप परिणमे, नया बंध नहीं हो रहे और जीव ग्रह अपने शुद्ध स्वरूप परिणमे, अनंत चतुष्टय परिणमे, अनंत चतुष्टय यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत देवी, ऐसे मुख्य गुण है। बाकी तो सभी गुण सिद्ध हो जाते हैं, जो अनुजीवी गुण है वो उन्नत चतुष्टय के साथ सभी गुण हो जाते हैं, जो प्रतिजीवी गुण है वो बाकी रहे हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, गुण महत्व रहे हैं पर्यावरण में। कहते हैं कि अनंत चतुष्टय जो परिणाम है समान भाव मोक्ष दिया है अनंत अवस्था का, तथा उद्वेन्द्र ज्ञानावरणादि कर्म पर्याय को छोड़े और उद्वेन्द्र जो ज्ञानावरण शुद्ध पर्याय जो परिणाम से संबंध था वो कर्म सामान्य रूप परिणाम से चले गए, छुट करके प्रकृति को भी छोड़ करके कर्म वर्णना में सर्व सामान्य रूप हो गए और जीव के प्रदेशों से सर्वथा स्वतंत्र रूप होकर जीव के प्रदेश के साथ जो संबंध था एक क्षेत्र आएगा तो भी छोड़ करके संबंध छूट जाए और जीव पूर्वज दोनों भिन्न भिन्न हो जाए उसका नाम मोक्ष कहने में आता है। ये अनंत पुष्ट रूप हुए ये भावमोक्ष है और सर्व कर्मणों का संबंध छूट गया उसको दृढ़ मोक्ष कहने में आता है।
अभिन्न अनुभव हित को कर रहा है वो हित को स्थित
आत्मा में एकत्र होगा, एकत्र छोड़कर भिन्नत्व होगा, निर्ज्ञान से सब आत्मा में एकत्र होगा। भिन्नत्व नहीं हुए, विभाव के साथ अभिन्नत्व रह जाए पर आत्मा में भी अभिन्नता हो जाए, इसको बात करती क्योंकि अवस्था ही पलटती है, अवस्था ही पलटती है। एक अवस्था अपने अवस्था रूप रहे और बिना पलटे दूसरी अवस्था रूप में हो जाए, वो तो विज्ञान के बाहर की बात हो गई, सत्य शब्द के बाहर की बात हो गई। जैसे हमारी उम्र भी है, सीधी है, सीधी भी रहे और ऐसी भी हो जाए, वो बात कैसे बनेंगे? इनकी अवस्था जो स्थिति है वो पलट करके ऐसी हुई है, ऐसी भी रहे और ऐसी भी रहे, दो बात को मिलने वाली इस तरह है। जीव का शुद्धपना रूप परिणाम, शुद्ध रूप परिणाम, मैंने शुद्धपना रूप परिणाम, शुद्धपना रूप स्वभाव में शुद्ध प्रणाम परिणाम की बात करती है। मोक्ष की अवस्था में उसका विभाव रूप अशुद्ध परिणति के उसका विवरण और जीव का विभाव रूप अशुद्ध परिणति मिटने का और जीव का शुद्ध प्रणाम परिणाम होने का विस्तार करते हैं, विवरण मैंने विस्तार करते हैं। इसका विवरण इस प्रकार है कि शुद्धत्व परिणाम सर्वथा सतत कर्मों के क्षय करने का कारण है। क्या था? जीव के बंधे हुए सतत कर्म का क्षय होने का कारण ये भी है जीव का शुद्धत्व परिणाम होना। अगर जीव शुद्धरूप परिणमता है, शुद्धरूप परिणमता है, विभाव नहीं परिणमता है, तो सभी तत्व उसका क्षय हो जाएगा। इसलिए ज्ञानावरण के लिए कुछ करे, दुष्णावरण के लिए कुछ करे, आयु के लिए कुछ करे, ऐसी बात नहीं। एक शुद्धरूप परिणम ऐसा कारण है कि जिससे सभी तत्व का क्षय हो सकता है। ऐसा शुद्धत्व परिणमन सर्वथा द्रव का परिणमन रूप है, निर्विकल्प रूप है, इसलिए वचन के द्वारा कहने का समर्थपणा नहीं है। यानी है परिणमन शुद्धत्व रूप परिणमन कर रहे हैं लेकिन उसको अपनी भाषा में बता सकते हैं परिणाम ऐसा है। ऐसा शुद्धत्व परिणाम सर्वथा द्रव का परिणाम रूप है, मतलब क्या कि जो द्रव स्वभाव है वो परिपूर्ण शुद्ध है, तो शुद्धत्व रूप परिणाम है वो सर्वथा यानी पूरा का पूरा द्रव का परिणाम है, द्रव का परिणाम रूप है, जैसा द्रव है वैसा। और यह निर्विकल्प रूप है, ये विकल्प में नहीं आता, ये परिणाम विकल्प में नहीं समाता, तो फिर भाषा में आने का तो सवाल पैदा होता है। इसको तो बात की बात है, इसका स्वरूप इस प्रकार है कि जो आत्मस्वरूप ज्ञान में आता है, अंतर्मुख ज्ञान में जो आत्मस्वरूप आता है और अंतर्मुख ज्ञान में जो शुद्ध परिणाम का अनुभव होता है, उसका जो ज्ञान होता है, अनुभव ज्ञान होता है, वैसा तथा वैसा वो विकल्प की अवस्था में नहीं आता, विकल्प में नहीं आता। जो निर्विकल्प ज्ञान का विषय है वो विकल्प ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। और भाषा तो विकल्प के निमित्त से होने वाली चीज है, तो जो विकल्प में नहीं आता है विषय तो भाषा में आने का सवाल होता है। भाषा में भी दो प्रकार है, एक बोलने की भाषा होती है, एक लिखने की भाषा होती है। बोलने की भाषा में जितना आता है उतना लिखने की भाषा में नहीं आता है, दूर ग्रंथ लिख रहे हैं तो लिखने में आता है, उससे ज्यादा तो बोलने में आता है। बोलने में आता है इससे ज्यादा तो विकल्प में होता है, विकल्प में होता है इससे ज्यादा निर्विकल्प अवस्था में होता है, ऐसी उत्तर उत्तर अवस्था होती है। इसलिए ग्रंथ पढ़ने वाले को समझना चाहिए कि हमको क्या मिलता है। ज्ञानी के ज्ञान में जो चीज है उसमें से हमको कितनी मिल रही है तो समझ लेना चाहिए, तो बहुत समझ में हमको मिल रही है। इसलिए ज्ञानी से प्रत्यक्ष परिचय करने का जो संबंध खास करके बहुत भजन देते हैं, इसका यही कारण है प्रत्यक्ष परिचय का। तो लिख के जाएंगे उतना उसके बोलने की भाषा में इससे ज्यादा होता है, तो खुद ही लिखते हैं कि जितना ज्ञान में आता है उतना कलम में नहीं, उतना बोलने में नहीं आता और बोलने में आता उतना कलम में नहीं आता है, कलम से बढ़िया है। तो जो लिखावट है उसमें बहुत समर्थ होता है, इससे ज्यादा तो प्रत्यक्ष रूप में मिलता है। प्रत्यक्ष रूप में भाषा से झलक होती है, तो झलक के साथ जो भाषा आती है, झलक की चेष्टा के साथ जो भाषा आती है उससे जो बोध मिलता है, ऐसा बोध कभी सके मिल सकता है। इसलिए अगर हमें प्रत्यक्ष बोध मिलता है तो हमें ग्रंथ पढ़ने का अभिप्राय या प्रायोरिटी रखना चाहिए। सत्संग का नंबर पहला और पढ़ने का नंबर दूसरा, ऐसा विवेक होना चाहिए। बनना क्या रूप में लोग करते हैं, खुद आपको सत्संग मिल जाएंगे, आपको मिलता है साथ हो जाएंगे, उनको कहीं विवेक नहीं। क्या कहा है सर, पैसा और निर्विकल्प भी है, निर्विकल्प है उसमें रतन के द्वारा कहने का समर्थ बना को हम वचन के द्वारा बता सकेंगे, शुद्ध प्रबंधन उसको बता सकेंगे, शुद्ध शब्द का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन उसका भाव शब्द में नहीं, भाव शब्द में होता नहीं और भाव में शब्द होता नहीं, उसका अंतर है। लेकिन दूसरे टाइम दूसरे में अभाव रहता है, सहयोगी क्या ज्ञाने के परिणाम को देख सकते, एक तो बात वो है कि ज्ञाने के परिणाम को देखने में जो रूप देता है, जितने ज्ञाने के संघ में जाते हैं उतने सब ज्ञानी को परिणाम को देख सकते नहीं है। क्यों, तो उतने रूप होता है कि जो देख लेते हैं वो परिणाम जाते हैं, क्या वो ज्ञानी के परिणाम को देख लेते हैं वो खुद ही परिणाम जाते हैं, तो हम दस्ता देते हैं स्वाजी का, तो विज्ञान का विषय सुना उन्होंने प्रथम स्रोत प्रवचन में, राग ने ज्ञान जुदा है, जुदा के मंदा करते हैं, राग ने ज्ञान जुदा है, तो उन्हें सुना था उतनी बात नहीं है, राग और ज्ञान जुद आत्मा को ज्ञान मात्र कहने दुख से उसे अभिप्राय भी नहीं है। तो अनंत गुण है, अस्तित्व मात्र क्यों नहीं कहा, आनंद मात्र क्यों नहीं कहा, श्रद्धा मात्र क्यों नहीं कहा, ज्ञान मात्र क्यों कहते हैं? क्योंकि कहने वाले का यह अभिप्राय बोलता है। क्या बोलता है? अभिप्राय किस तरह से? अभिप्राय में अनुभव है, वो अनुभव बोलता है कि मैं कैसे समझा, मैं भी एक चीज अनजाना था, अज्ञानी था, मैं किस प्रकार से समझा। तो जिस प्रकार से वो समझे है उसी प्रकार से वो समझाते हैं। तो समझाने के पीछे उनका अनुभव बोलता है। कौन बोलता है? अनुभव। और जिसका उसको अनुभव होता है उसको कहने वाले का अनुभव के साथ अनुसंधान हो जाता है, तो उसको पता चलता है कहने वाला अनुभव। ऐसे दूसरे भी जो जात शास्त्र है प्रयास भी उसके शास्त्र है, उसमें जो उसमें विषय चला है ऐसा एक शास्त्र हमारे विभिन्न साहित्य में सविता ध्यान करते हैं। ऐसे तो ग्रंथ तो उसमें दो ही है, पूर्वाध और उत्तरार्ध, पांच अध्याय पूरा नहीं हुआ है, वो अधूरा रह गया है। लिखने वाले कौन आचार्य है, कौन मुनि है, कौन ज्ञानी है, पता नहीं, सब कुछ वह लिखा हुआ है। करीब 1700-1800 जाना है दो मास्टर लिख करते हैं, उसमें पहले में करीब 750 से ज्यादा है, शुरुआत में उत्तरार्ध में करीब 1200 से ज्यादा है। उसमें दूसरे अध्याय में उत्तरार्ध में 401 नंबर के साथ 400 के अलग अलग में सम्यक सम्मुख जीव का विवरण करते हुए और उसको साधन द्वारा बताते हुए प्रसिद्ध जाता है। या जो उसके भी प्रसिद्ध जाकर प्रचारों किया है, बहुत तर्क शुद्ध प्रतिपादन करते हैं, बहुत तर्क शुद्ध प्रतिपादन है। तो उन्होंने 401 नंबर के जाकर में टोटल लगाया है कि आत्मा में साधन कोई साधन के निर्माण किए जाए, ज्ञानम एकम कारणम ऐसा कहते हैं गाथा उस तरह से कि ज्ञानम एकम कारणम साधन आदि विभोचिता, साधन की विधि का विधान करे, कथन करे, चैतन्य के ज्ञान के कारण, ज्ञान एक मात्र कारण, स्वानुभूति एक नेतृत्व, एक कारण है, एक मात्र कारण है, तस्मात् तद् परम पदम, इसलिए ज्ञान को परम कर सकते हैं। वो गुण तो अनंत है लेकिन ज्ञान को हम परम सकते हैं। तो इस विषय में सभी ज्ञानियों का एक अभिप्राय है, चाहे दुष्कृत जी का शिव विलास का ज्ञान निर्विकार पढ़ो, चाहे समय सार पढ़ो, चाहे प्रवचन सार पढ़ो, चाहे बच्चा जय करो, एक अभिप्राय है। पर एक अभिप्राय हो सकता है ज्ञानी का, मुनि का, आचार्यों का, गंधर्वों का, दुरेंद्र परमात्मा का अभिप्राय सभी का एक ही अभिमान है। किसी का गलत अभिप्राय हो सकता, दो अभिप्राय नहीं हो सकते, एक और एक अभिमान है परमात्मा किसी बात। मात्र ज्ञान नहीं करते हैं, मात्र मात्र विज्ञान है क्या? हमारे घर में अगवा बने और आपके घर में अगवा बने या फिर किसी के घर में अगवा बने तो भिन्न प्रकार से बनता है क्या? कोई कैसे बनेगा? तो कहते हैं कि कोई बाय कितनी भी शत्रु घर बना दे, दूसरे तरीके से बना तो दे, ऐसा करते बोलते जिंदगी बहुत जिंदगी भी होती है। हजार साल पहले आप पहला इस तरह से बनाते थे, अब तो मॉडर्न जमाना दूसरा है, जमाना ही है जो पहले हो गया है, मॉडर्न टाइप है तो नहीं बने वाले बनाते थे। कोई टाइम नहीं, दूसरे वाले तो फिर बने वाला है, कोई टाइम नहीं दिख रहे। इसकी माँ से टाइम मेरे भाई व्यक्ति से करती हो ओवर वाइज बना दे, फिर दूसरे तरह से नहीं बनेगा, इसी तरह से बनाना पड़ेगा, दूसरा दूसरा तीनों दे रही है पानी घी और आटा होता है वो भी नहीं बनेगी, उसके काम में भी नहीं आएगी, तीनों को फेंक देना पड़ेगा, ये बात हो जाएगी। परिणाम इस कारण इस रूप में कहते हैं कि जीव के शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप परिणमाता है ज्ञान गुण, तो मोक्ष का कारण है। शुद्ध स्वरूप के अनुभव में परिणमाता तो है कि ज्ञान गुण परिणमाता है, उसी कारण है मोक्ष का मुख्य कारण है, यानी कुछ जरूरत है तो सुन्य दर्शन का भी कारण है। उसका समाधान ऐसा है कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप है जो ज्ञान, और जीव के शुद्धत्व परिणाम को सर्वथा लिए हुए हैं। जो शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप ज्ञान का पर्याय है उसमें दूसरे लोगों का शुद्धत्व रहता है ऐसा नहीं बनता है। जीव का शुद्धत्व परिणाम जो होता है उसके कारण से वो ज्ञान अनुभव करता है शुद्ध स्वरूप का, ज्ञान गुण तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे और जीव का परिणाम अशुद्ध स्वरूप रह जाए ऐसा नहीं है। बात नहीं है तब वो गुणांश नहीं समझ दर्शन के कारण में जीव के अनंत सभी गुण यथा संभव इंसान अनुसार परिणाम करने लग जाते हैं। इसलिए आप ज्ञान से कहेंगे समझेंगे मेरे सुनने वाला ज्ञान से और कहेंगे भी ज्ञान के नाम से, लेकिन साथ साथ पर बात है रत्न प्रेम तो तीन ही गुण आए लेकिन अनंत गुण है, लेकिन साधन और समझना और साधन करना वो ज्ञान से होगा, इसके अलावा समझेगा ये
पारंता
Thank you.